नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने रिकॉर्ड तीसरी बार आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया। ईरान ने आयतुल्ला अली खामेनेई के पुत्र मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर घोषित किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण तेल की कीमतें 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल के पार। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेंद्र शाह का अगला प्रधानमंत्री बनना तय है। और हैदराबाद में FIH विश्व कप महिला हॉकी क्वालिफायर में आज भारत का सामना स्कॉटलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने तीसरी बार आईसीसी T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही उसने लगातार दो बार T20 विश्व कप जीतने का गौरव हासिल किया है। विश्व कप फाइनल में कल भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। एक रिपोर्ट।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत न्यूजीलैंड को मात देकर फिर से चैंपियन बन गया। इसके साथ ही भारत T20 विश्व कप तीसरी बार जीतने वाला पहला देश भी बन गया है। भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 256 रन का विशाल लक्ष्य दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में केवल 159 रन बनाकर ढेर हो गई। भारत T20 वर्ल्ड कप लगातार दूसरी बार जीतने वाला देश भी बन गया है। भारत की गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने फाइनल में कमाल का प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह ने केवल 15 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। वहीं अक्षर पटेल ने 27 रन देकर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच और संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
अमेरिका और इसराइल के साथ जारी युद्ध के बीच ईरान ने अपने नए सर्वोच्च नेता के नाम की घोषणा कर दी है। मीडिया की खबरों के अनुसार मुज्तबा खामेनेई अपने पिता आयतुल्ला अली खामेनेई का स्थान लेंगे, जिनकी मौत अमेरिका और इसराइल के शुरुआती हमले में तेहरान में हो गई थी। इसराइल ने पहले ही धमकी दी है कि आयतुल्ला अली खामेनेई के किसी भी उत्तराधिकारी को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात में ईरान के हमले जारी हैं। ईरानी मिसाइलों ने कल भी अबू धाबी को निशाना बनाया, हालांकि कई मिसाइलें हवा में नष्ट कर दी। ब्यूरा हमारे संवाददाता से।
28 फरवरी से अमेरिका और इसराइल के लगातार हवाई हमलों का उद्देश्य ईरान की मिसाइल क्षमता और प्रमुख नेतृत्व संरचनाओं को नष्ट करना रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों सहित क्षेत्रीय ठिकानों पर हमलों से जवाब दिया है, जिससे पश्चिम एशिया में संकट और भी गहरा गया है। तेहरान में रात होते ही इसराइली हमले फिर से शुरू हो गए और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के बाद राजधानी धुएं से घिरी है। अमरीकी सेना ने ईरान के नागरिकों के घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। समुद्री स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य अधिकांश वाणिज्यिक जहाजों के लिए लगभग बंद हैं। इस जोखिम के कारण जहाजों की आवाजाही में 80% की गिरावट आई है। प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने आवागमन निलंबित कर दिया है। इससे वैकल्पिक लॉजिस्टिक नेटवर्क को वैकल्पिक मार्गों की तलाश करनी पड़ रही है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ईरान के साथ जारी युद्ध में 7वें अमरीकी सैनिक की मृत्यु हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका के केंद्रीय कमान ने ईरान के हमलों में घायल एक अमरीकी सैनिक के कल रात निधन की पुष्टि की। इस बीच इजरायली रक्षा बलों ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के वायुसेना मुख्यालय पर हमला किया। उधर सऊदी अरब ने शैबा तेल क्षेत्र को निशाना बनाने वाले एक ड्रोन को मार गिराया। खाड़ी के कई शहरों पर ईरानी बमबारी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त अरब अमीरात में अपने राजनयिक कर्मचारियों से देश छोड़ने को कहा है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने भी निवासियों को निकटतम सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी जारी की है। इसराइल सेना ने बेरूत पर हमले में लेबनान कोर के 5 वरिष्ठ कमांडरों के मारे जाने का दावा किया है। इसराइली रक्षा बलों ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि लेबनान कोर के वरिष्ठ कमांडर दाऊद अली जादे, माजिद हस्सानी, खुफिया कोर के कमांडर अली रजा अजहर और हसन अहमदुल्लो हमले में मारे गए लोगों में शामिल थे। तेल की कीमतें पिछले 3.5 वर्ष में पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई हैं। मध्य पूर्व में ईरान युद्ध के कारण तेल का उत्पादन और परिवहन बाधित हुआ है। एक बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कल 101.19 डॉलर तक पहुंच गई। शुक्रवार की कीमत $92.69 प्रति बैरल से ये 9.2% अधिक है। वैश्विक तेल मूल्यों में उछाल के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की परमाणु क्षमताएं नष्ट होने के बाद तेल की कीमतें तेजी से गिरेंगी। उन्होंने मूल्य वृद्धि को विश्व की सुरक्षा और शांति के लिए बहुत छोटी कीमत बताया। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमले के भय से हुर्मुज जल भूमध्य से तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग बंद है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान से तेल और गैस निर्यात का ये मुख्य मार्ग है। नागर विमानन मंत्रालय पश्चिम एशिया में वर्तमान स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। क्षेत्र में संघर्ष के कारण भारत और पश्चिम एशिया के बीच हवाई यात्रा पर असर पड़ा है। यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू विमान सेवा सुनिश्चित करने के लिए विमानन कंपनियां वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक परिचालन कर रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान स्थिति के अनुसार भारतीय विमानन कंपनियां आज 50 उड़ानें संचालित करेंगी। भारतीय विमानन कंपनियों ने दुबई, अबुधाबी, फुजैरा, मस्कत और जद्दा के लिए 49 उड़ानें संचालित की हैं। शनिवार को कुल 51 उड़ानें भारत पहुंची। इन उड़ानों में 8,175 यात्री सवार थे। पश्चिम एशिया में वर्तमान स्थिति के कारण कई क्षेत्रों में विमान सेवाओं पर असर पड़ा है। यात्रियों को विमान कंपनियों से जारी नवीनतम जानकारी पर नजर रखने का परामर्श दिया गया है। उड़ानों की अद्यतन जानकारी के लिए मंत्रालय के यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष से हेल्पलाइन नंबर 0112460 4283 और 0112463 2987 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आज एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। इसमें हजारों सैनिक भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास अमेरिका के पश्चिम एशिया युद्ध में शामिल रहने के दौरान हो रहा है। दक्षिण कोरिया के संयुक्त सेना प्रमुख ने बताया कि फ्रीडम शील्ड अभ्यास में लगभग 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक भाग लेंगे और ये अभ्यास 19 मार्च तक चलेगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता और पिछले वर्ष सितंबर में जेनजी आंदोलन के प्रमुख चेहरे बालेंद्र शाह का अगला प्रधानमंत्री बनना तय है। उनकी पार्टी ने संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल की है। पार्टी को प्रतिनिधि सभा में प्रत्यक्ष चुनाव वाली 165 सीटों में से 122 सीटें मिली हैं और 3 सीटों पर वो आगे चल रही है। नेपाल में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद ये सबसे बड़ा चुनावी बहुमत है। चुनाव आयोग ने अब तक 165 सीटों में से 159 के परिणामों की घोषणा कर दी है। अंतिम चुनाव परिणाम अगले दिनों आने की संभावना है। इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व से निर्वाचित सीटें भी शामिल होंगी। 35 वर्षीय बालेंद्र शाह ने 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके और सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को लगभग 50,000 वोटों से हराया है। हैदराबाद में FIH विश्व कप महिला हॉकी क्वालिफायर के पूल बी के दूसरे मैच में आज भारत का सामना स्कॉटलैंड से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम ने कल उरुग्वे पर 4-0 की शानदार जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। सुनलिता टुप्पो ने 21वें मिनट में पहला और ईशिका ने 40वें मिनट में दूसरा गोल किया। लालरे मिया सियामी ने 49वें मिनट में तीसरा और रतुजा दादा से पिसार ने 98वें मिनट चौथा गोल करके टीम की जीत पक्की की। हैदराबाद में होने वाला ये टूर्नामेंट महिला हॉकी विश्व कप के 2 क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में से पहला है। दूसरा टूर्नामेंट चिली के सेंटियागो में चल रहा है। दोनों टूर्नामेंट की प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम इस वर्ष बेल्जियम और नीदरलैंड्स में संयुक्त रूप से होने वाले महिला हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रिकॉर्ड तीसरी बार ICC T20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया। ईरान ने आयतुल्ला अली खामनेई के पुत्र मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर घोषित किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेंद्र शाह का अगला प्रधानमंत्री बनना तय है। और हैदराबाद में FIH विश्व कप महिला हॉकी क्वालिफायर में आज भारत का सामना स्कॉटलैंड से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।